जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra प्रभुपाद की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री गौर निताय की जय श्री राधा गोविंद जी की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है विदुर का मैत्रेय के पास जाना और श्लोक संख्या है 22। कृपया मेरे बात दोहराएं। यत्र नारायणो देवो यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि नरश्च भगवान ऋषि मृदो तीव्रं तपो दीर्घम् मृदो तीव्रं तपो दीर्घम् तिपाते लोक भावनो तिपाते लोक भावनो यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदो तीव्रं तपो दीर्घम् तिपाते लोक भावनो यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदो तीव्रं तपो दीर्घम् तिपाते लोक भावनो
यत्र नारायणो देवो
यत्र नारायणो देवो
भगवान ऋषि
नरश्च भगवान ऋषि दीर्घम
पाते
लोक भावनो यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि तीव्रं तपो दीर्घं तिपाते लोक भावनो यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रं तपो दीर्घं त्रिपाते लोक भावनो नारायणो देवो शब्दार्थ इस प्रकार से है यत्र जहां नारायण भगवान देव अवतार से नरह मनुष्य च भी भगवान स्वामी ऋषि ऋषि मृदु मिलनसार तीव्रम कठिन तपह तपस्या दीर्घम दीर्घकाल तिपाते करते हुए लोक भावनों सारे जीवों का मंगल। अनुवाद और तात्पर्य हिस्ट बाय इंग्लिश श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तात्पर्य, हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल में जाते थे और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थस्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है जो प्रायः वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर चार धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ आते हैं। ये चार धाम हैं बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अभी भी इन पर सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत कुंति दिव्यस्तवैर वेदय सांग पद क्रमोपनिषदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदोसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद्भागवत सत्र में। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है इसमें उद्धव और विदुर का जो संवाद है। तो प्रसंग से सभी लोग परिचित है कि विदुर जी उद्धव को मिले और वहां पे उद्धव जी भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए उद्धव के साथ बहुत विदुर जी के साथ बहुत वार्तालाप और बहुत सारे लीलाओं का वर्णन किया स्मरण करते हुए। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि उद्धव जी भगवान का उस अनुग्रह को उस कृपा को याद कर रहे हैं जो कि साक्षात भगवान जब प्रकट थे और अभी लीला समाप्त करके अपने धाम में जब जा रहे थे तो विशेष अनुग्रह उद्धव को जो प्राप्त हुआ था उस विशेष अनुग्रह को पिछले श्लोक में उन्होंने याद किया कि कितना वो कृपा को याद करते हुए कि किस प्रकार से भगवान ने वहां पे मैत्रेय मुनि थे फिर भी उन्होंने विशेषतः अनुग्रह मेरे ऊपर किया और उस अनुग्रह उस कृपा को याद करते हुए विदुर को बताते हैं कि हे विदुर वो जो भगवान की कृपा था मेरे ऊपर मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं और वो जो दर्शन था भगवान जब प्रकट रूप में थे और अंतिम समय वो लीला समाप्त करके अपने धाम में जब प्रस्थान कर रहे थे तो उस समय उनका जो दर्शन मुझे प्राप्त हुआ उस दर्शन को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। ये पिछले श्लोकों में मैंने सुना कि उस दर्शन को बिल्कुल मैं भूल नहीं पा रहा हूं और वो जो आनंद वो दर्शन का जो आनंद है क्योंकि ये जो एक शुद्ध भक्त होता है ना कभी भी भगवान का विस्मरण चाहता ही नहीं किसी भी क्षण वो भगवान का विस्मरण नहीं चाहता है। वो 24 घंटा अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त रखता है जैसे कि हमारे आचार्य लोग हुए और वर्तमान आज भी हमारे गुरुजन हैं। आप उनके जीवन हिस्ट्री को देखेंगे उनके साथ अगर कुछ समय बिताएंगे तो पता चलता है कि वो अपने आप को 24 घंटा भगवान की सेवा में नियुक्त रखते हैं। बिल्कुल वह चाहते ही नहीं कि भगवान का विस्मरण हो। एन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत अपने मन को कृष्ण में भगवान में लगा के ही रखते हैं किसी न किसी माध्यम से कभी भी विस्मरण नहीं चाहते। इसलिए कहा पुराणों में श्लोक है ना स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित हमेशा सतत वह भगवान का स्मरण करना चाहते कभी भी उनका विस्मरण चाहते ही नहीं है। यही चीज यहाँ पे उद्धव जी उस अनुग्रह को उस दर्शन को याद करते हुए विदुर को बोल रहे हैं कि वो जो आनंद का अनुभव था भगवान के दर्शन के समय वो आनंद का वियोग अभी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं इसका वर्णन करते हैं विदुर जी को। बिल्कुल उस आनंद और उसके अभाव में मैं पागल होते जा रहा हूं इसलिए वो पिछले श्लोक में कहते हैं कि अभी मैं भगवान तो चले गए प्रस्थान कर गए अपने धाम में तभी मैं भगवान के निर्देशानुसार भगवान चाहते थे जब यहाँ पे थे भगवान तो वो चाहते थे कि मैं बद्रिकाश्रम चले जाऊं तो अभी मैं भगवान को उस आदेश को अपने जीवन में उतारूंगा और मैं यहां से अभी प्रस्थान करके बद्रिकाश्रम जाऊंगा, तभी बद्रिकाश्रम प्रस्थान करने ही वाले हैं। तो पिछले श्लोक में बद्रिकाश्रम का धाम का थोड़ा वर्णन आ चुका है कि अभी उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाएंगे भगवान के आज्ञा अनुसार। भगवान की आज्ञा थी कि आप बद्रिकाश्रम जाएंगे, और उसी बद्रिकाश्रम को याद करते हुए वर्णन करते हुए वो आज का श्लोक कहते हैं। आज का श्लोक संपूर्णतः उस धाम के बारे में वर्णन है, बद्रीनाथ धाम के बारे में वर्णन है। नहीं हुआ, चलो ठीक है। उस बद्रीनाथ धाम का वर्णन करते हैं आज के श्लोक में। तो आज का जो श्लोक है कहते हैं कि यत्र यत्र भगवान नारायण देव च नरह ऋषि, कि जिस यत्र मतलब जिस, अर्थात पहले श्लोक में, इससे पहले वाला जो कल का श्लोक था उसमें बद्रीनाथ धाम का वर्णन आ चुका है, इसलिए कहते हैं यत्र उस बद्रिकाश्रम में, यत्र भगवान नारायण देव, भगवान नारायण देव और च नरह ऋषि, और नर ऋषि, नर और नारायण भगवान क्या कर रहे हैं? तो श्लोक के दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं, दूसरे लाइन में, कि लोक भावन भावनों कि और इस संसार के सारे जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, लोक भवानो मृदु तीव्र तीव्रम दीर्घम तप ते पाते। कहते हैं कि लोक भवानो, इस संसार के जीवात्माओं को उद्धार के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, राधा कुंड कहते हैं कि लोक भावनो कि ओ जो नर नारायण है बद्रिक आश्रम में क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं लोक भवानो मृदु तीव्रम दीर्घम तपह तपोते ते पाते, कि इस संसार के सारे जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान नर और नारायण क्या कर रहे हैं? वहां पे घोर तपस्या कर रहे हैं, तीव्रम दीर्घम और दीर्घ काल तक, दीर्घ काल कर तपस्या कर रहे हैं। किस लिए तपस्या कर रहे हैं? इस संसार के जीवात्माओं के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तब प्रश्न एक उठता है, क्या भगवान को जीवात्माओं के ऊपर अनुग्रह करने के लिए तपस्या करना पड़ता है? ये प्रश्न उठ सकता है ना? भगवान तो स्वतंत्र है, भगवान तो कभी भी किसको कृपा कर सकते हैं, उनके उनको तपस्या करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे ये बात एक्चुअली भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि संसार में हमको, हम अगर बद्ध जीवों को, विशेषतः उन भक्तों के लिए जो भक्त भगवान के नामों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सारे जीवात्माओं को कृष्ण के पास लेके जा रहे हैं, उनको भक्ति में लगा रहे हैं, उन सारे अर्थात सारे प्रचारकों के लिए जो कि भगवान जीवात्माओं को भगवान तक उनको भक्ति में लगाते हैं या उनको प्रचार करते हैं, उनका हृदय परिवर्तित करते हैं, उन लोगों के लिए एक शिक्षा देने के, शिक्षा देना चाह रहे हैं कि अगर इस संसार की जीवात्माओं को ऊपर अनुग्रह करना है, उनका उद्धार करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करना पड़ेगा। ये सिखलाना चाहते भगवान नर और नारायण, यहाँ पे तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार के जीवात्माओं को, उनको भगवत भक्ति में नहीं लगा सकते, उनका हृदय परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये दिखलाना चाहते भगवान, ये सिखाना चाहते हैं हमको यहाँ पे। तो लोक भावनों, भगवान इस संसार, इस लोक का, लोगों के जीवों का उद्धार करने के लिए, उनके ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान नर और नारायण ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या वहां पे किया। तो इस संसार के जीवात्माओं को अगर हम कृष्ण भगवत भक्ति में लगाना चाहते हैं तो हमको तपस्या बहुत जरूरी है। और तपस्या क्या है? सुबह शंख बजने से पहले आना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। शंख बजने से पहले आ जाना सुबह, हमारे लिए वही मंगल आरती से लेकर ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय तक, मतलब खत्म होने तक, ये हमारे लिए बड़ी तपस्या है। यही सबसे बड़ी तपस्या, अगर इसको हम पंचुअल ढंग से करें तो यही सबसे बड़ी हमारी तपस्या है। अभी देखिए, हो सकता है कि ऐसा सोच सकते हैं हम कि क्या है, दो मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा शंख बज गया, दर्शन तो खुला है, क्या हो गया ऐसा? देखिए हमको क्या कर रहा है, हमारा मन कुछ ढीला छोड़ रहा है, क्योंकि मन जो है, मन का जो डिसीजन 90% गलत होता है, मन जो सोचता है, कुछ परसेंट ही मन अच्छा सोचता है, बाकी समय मन गलत ही सोचता है, गलत कार्य में ही लगाता है हमारा मन। तो तपस्या मतलब क्या?
जानबूझकर जो चीज हम नहीं करना चाहते हैं, हमारा मन सपोर्ट नहीं कर रहा, उस चीज को करना वही तपस्या है। अर्थात जानबूझकर अपने शरीर को तकलीफ देना है तपस्या है। तपस्या का यही डेफिनेशन है कि जानबूझकर अपने शरीर को तकलीफ देना यह तपस्या है। तो भगवान यह सिखाना चाहते हैं यहां पर नर नारायण कि अगर इस संसार की जीवात्माओं का उद्धार करना है, लोगों को उनके हृदय को परिवर्तित करना है, तो हमको अपने साधना को, अपने तपस्या को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। केवल ज्ञान से हम किसी को हृदय नहीं परिवर्तित कर सकते। ज्ञान बांट सकते हैं, हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा। लेकिन हमारा साधना, हमारा तपस्या जो है स्ट्रांग रहेगा, तो भले से हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उस साधन के बल से उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाएगा। जो कि गुरु महाराज बताते हैं कि रशिया में जो एक लैंड क्लिक हुआ, बहुत बड़ा लैंड, ये गवर्नमेंट का था वो एक्चुअली, लेकिन वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग थे बहुत विरोध कर रहे थे, लेकिन बहुत विरोध कर रहे थे, वो चाह नहीं रहे थे कि यहाँ पे कोई हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, इस प्रकार कोई मंदिर बने। लगभग 100 कितना, बहुत बड़ा लैंड था, कितना एकड़ पता नहीं, अभी ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन महाराज बताते हैं, इसको बार बार बताते हैं कि वो जमीन गवर्नमेंट ने हमको दे चुका था। ये बात क्रिश्चियन लोग को वहां के पता चला जब ही, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया, और विरोध करते हुए वो इतना अपना ग्रुप बढ़ा लिए कि वो रोड पे धरना देने लगे कि यहाँ पे कोई और संप्रदाय नहीं आना चाहिए, कोई हिंदू धर्म नहीं आना चाहिए, और बहुत विरोध करने लगे। और तब ज्यादा विरोध करने लगे एक्चुअली जब ये लैंड गवर्नमेंट ने इस्कॉन को देना का सोच लिया था ऐसा, तो उस समय जानते हैं कि कोई भी लैंड अगर हमको मिलता तो हम बड़े बड़े प्लान कर लेते हैं। थैंक यू। बड़े बड़े प्लान कर लेते हैं, पहले से ही अपना उसका रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बनाना है। तो महाराज बताते हैं कि वो जो हमारा गुप्त रूप से प्लानिंग हुआ था ना, किसी वो कृष्ण लोग को पता चल गया, और जब पता चल गया तो उन लोगों ने क्या किया, पूरा अपना ग्रुप बढ़ा के लगभग 4 से 5 हजार लोग रोड पे खड़े होकर धरना देने लगे और विरोध करने लगे, और उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा पीछे हटना पड़ा, गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। और फिर बाद में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि देखो अभी वोटिंग होगा, इस्कॉन की तरफ से एक साधु आएगा और कृष्ण की तरफ से एक पादरी, जो भी उनका संत आएगा, दोनों में जिसको जो लोग वोट ज्यादा देंगे उसका ये लैंड हो जाएगा। तो उस समय वो लोगों ने वोटिंग किया था, और इस्कॉन की तरफ से एक कोई प्रभु जी थे, मदन मोहन प्रभु, यस, तो वो थे, और उधर से भी एक कोई संत थे। और वोटिंग जब हुआ, वोटिंग में कुछ तो 48,000 वोट उनको मिला और 45,000 इस्कॉन को मिला, मतलब 3,000 वोट से हार गए। लेकिन महाराज बताते हैं फिर भी जब प्रेस वालों ने पर्सनल व्यक्ति से पूछते हैं ना, उसके बाद रोड पे पूछते हैं ना, तो सारे लोगों ने ये बोला कि कुछ भी हो, भले से इस्कॉन हार गया, लेकिन दोनों जो संत बैठे हुए थे ना, उसमें जो सबसे अगर सरल स्वभाव का साधु दिख रहा था ना, वो इस्कॉन का डिवोटी दिख रहा था। और ये सारे प्रेस वालों के इस प्रकार से पर्सनल इंटरव्यू ले लेके फिर डिसीजन चेंज होगा, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इस्कॉन को जगह दे दिया। तो इस प्रकार से देखिए, ये साधु, हालांकि वहां पे कोई नहीं जानता था कि साधु का क्या गुण होता है, तितिक्षवा करुणिका सुरोदम सर्वदिना, किसी को नहीं पता था वहां पे, लेकिन फिर भी हृदय परिवर्तित हुआ उनका, कि प्रभाव। महाराज इसी बात को बताते कि अगर हम अंदर से शुद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। इसलिए और ये शुद्धता प्राप्त करने के लिए हमको ये साधन भक्ति तपस्या ही बहुत जरूरी है पंचुअल तरीके से। तो यही बात एक्चुअली नर नारायण बताना चाह रहे हैं कि अगर हम संसार के जीवात्माओं को अगर कृष्ण भक्ति में लगाना चाहते हैं तो हमको साधना और तपस्या करना पड़ेगा। ये श्लोक का, ये आज के श्लोक का अर्थ है, आज के श्लोक में ये बताते हैं उद्धव जी। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में तात्पर्य में उस बद्रीनाथ धाम का वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि किस प्रकार से वो जो बद्रीनाथ धाम है बहुत ही रम्य स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है हिमालय का वह स्थान, और विशेष करके वो तपस्या करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है बद्रिकाश्रम। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं। और ये जो धाम है, विशेष करके चार धामों का उल्लेख करते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, और उसमें जो बद्रीनाथ धाम है, ये चारों धाम पृथ्वी पे वैकुंठ लोक है। अगर वैकुंठ में हमको जाना है तो इन चार धामों में से गए तो साक्षात वैकुंठ लोक है, इसका वर्णन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य करते हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री गौर निताय की, जय श्री राधा गोविंद जी की, जय श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो चार धाम है इस पृथ्वी जगत में, साक्षात वैकुंठ लोक है, वैकुंठ धाम है, और उसमें भी बद्रीनिकाश्रम धाम का वर्णन तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, लेकिन बद्रीनाथ एक धाम एक एक बार। सारे तीर्थों में बार बार जाना चाहिए, लेकिन बद्रीनाथ धाम एक बार गए तो समझ लो जीवन सफल हो गया। तो उस बद्रीनाथ धाम का वर्णन करते हुए विशेष करके प्रभुपाद जी सबसे पहले नर नारायण ऋषि का थोड़ा से वर्णन करते हैं, और नर नारायण के विषय में श्रीमद् भागवतम के में कई जगह पे थोड़े थोड़े आए हुए हैं संक्षिप्त में। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 4वें अध्याय में नर नारायण के विषय में थोड़ी सी व्याख्या मिलती है कि नर नारायण कौन थे। नर नारायण जब दक्ष की दक्ष प्रजापति दक्ष की पुत्री, वैसे प्रजापति दक्ष के बहुत सारे पुत्रियां थी, और उसमें से बहुत सारे पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह जो है धर्म के साथ हुआ था। दक्ष के 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ हुआ था, और उन धर्म के जो 13 ये जो पत्नियां थी उसमें से 12 पत्नियों को एक एक पुत्र था, और एक पत्नी को जिसका नाम था मूर्ति। धर्म के 13 पत्नियों में से एक पत्नी जिसका नाम था मूर्ति, और इस मूर्ति को जुड़वा संतान पैदा हुई, जुड़वा संतान उत्पन्न हुआ मूर्ति के, धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में जो जुड़वा संतान हुआ ये नर और नारायण प्रकट हुए जुड़वा संतान के रूप में। मतलब ये सतयुग की बात है, सतयुग का वर्णन करते हैं कि धर्म के, धर्म और मूर्ति के घर में भगवान नर और नारायण का प्राकट्य हुआ। और ये जो ये दोनों दोनों पुत्र थे मूर्ति और धर्म के, ये बहुत ही सुंदर तरीके से अपने माता पिता की सेवा करते थे। बचपन से ही बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत सुंदर थे, और विशेषतः सारे उनके धर्म के और भी जितने भी पुत्र थे उन सबसे ज्यादा तेजवान ये सारे ये पुत्र थे। और ये लोग भी अपने माता पिता की बहुत सुंदर तरीके से सेवा करते थे, और निश्चित रूप से अगर माता पिता की कोई सेवा करता है कोई तो निश्चित रूप से माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। और माता पिता प्रसन्न होकर, धर्म और मूर्ति प्रसन्न होकर एक दिन इन बालकों से कहने लगे कि तुम लोगों ने, तुम दोनों बहुत सुंदर तरीके से हमारी सेवा करते हो, हालांकि अन्य और भी पुत्र है हमारे, लेकिन फिर भी तुम लोग जो सेवा करते हो उसका माप नहीं, बहुत सुंदर तरीके से हम बहुत प्रसन्न है, इसलिए तुम लोग कुछ अगर मांगना चाहते हो तो मांगो, तुमको कुछ चाहिए तो उस समय ये जो नर और नारायण थे उस समय मांगे कि हे माते हे पिताश्री, हमको परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए कि हम ब्रह्मचारी बन जाए। दोनों परमिशन मांगते अपने माता पिता से, और माता पिता से परमिशन लेकर, अभी देखिए उसे धर्म जो थे तो धर्म के सिद्धांत को जानने वाले थे, अपने आप को तो कैसे भी रोक लिए, लेकिन माता मूर्ति अपने आप को बौखला गई हो कि कैसे आप हमको छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि चलो एक नालायक पुत्र रहे तो माता पिता सोच भी सकते थे सीट छोड़ा जाने दो लेकिन ये तो पुत्र विशेष प्रेम करने वाले थे, अपने माता पिता की सेवा करने वाले थे, तो कैसे एक माँ छोड़ सकती है। लेकिन फिर भी नर नारायण ने माता के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करने का अनुग्रह किया उनसे, और फिर माता ने अपने हृदय के ऊपर पत्थर रखकर उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम जिस कार्य में जा रहे हो उसमें सफल हो। तो इस प्रकार से माता और पिता का, और उस समय भगवान नारायण ने क्या किया कि माता को ये सांत्वना दिया कि आप चिंता मत करिए, मैं बीच बीच में आज के आपसे मिलता रहूंगा। तो बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसके कुछ ही दूरी पे इस माता मूर्ति का भी मंदिर है, जहाँ पे भगवान जाके बीच बीच में अपनी माता से मिलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान निकल पड़े तपस्या के लिए, कहाँ पे, हिमालय में, उस स्थान पे, क्योंकि वो जो स्थान था तपस्वियों के लिए सबसे विशेष स्थान है, तपस्या करने के लिए बहुत विशेष स्थान माना जाता है। तो ये सतयुग की बात थी, और उसी वो तपस्या करने के पश्चात जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो इस द्वापर युग में सतयुग के बाद द्वापर, इस द्वापर युग में वही नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। इसी बात को भगवद्गीता में जब भगवान आत्म साक्षात्कार का उपदेश दे रहे थे, भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे अर्जुन को, तो इसी बात को बता रहे, न त्वे न हम जातुनासम न त्वे जनाधिपा, तुम और हम पहले से थे, हम साथ में ही थे, लेकिन अंतर केवल यही है कि तुम नर होने के कारण भूल गए, भूल गए कि मेरे साथ में थे, लेकिन मैं नारायण हूं इसलिए मुझे पता है कि हम दोनों साथ में थे। इस बात को भगवद्गीता में भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार से वही धर्म और मूर्ति के पुत्र तपस्या करने के लिए कहां हिमालय पे निकल गए, क्योंकि वह स्थान जो है बहुत रम है, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं कि बद्रिकाश्रम बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां पे देखिए इतना रम्य स्थान है कि हमारे जितने भी देवर्षि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए और सिद्ध ऋषि हुए या गंधर्व, ये सारे लोग जाकर वहां पे तपस्या किए हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह उस बद्रिकाश्रम का धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो बद्रिकाश्रम धाम है, यह देव, वहां पर रहने वाले जितने भी निवासी है सब देवगण देवता है। अगर अगर हम इस पृथ्वी पर रहते रहते अगर स्वर्ग धाम का रसास्वादन करना चाहते हैं तो बद्रिकाश्रम जाना चाहिए, स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, क्योंकि सारे देवता वहां पे निवास करते हैं और वास्तव में बहुत पवित्र स्थान है। सारे ऋषि, ऐसा बहुत जगह पे वर्णन है कि जितने भी हमारे ऋषि हुए वो तपस्या करने के लिए गए तो वहीं पे गए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार का ब्रह्मचारी ट्रिप बद्रीनाथ धाम ही जाए। बहुत बहुत ही रम्य स्थान, बहुत ही सुंदर स्थान है, इसलिए इस बार प्लान करते हैं वहां पे जाने के लिए बद्रीनाथ आश्रम। और ये बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल पर पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह विकट जगह पे स्थित है, प्रायः वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है और बहुत ही सच में बहुत कठिन स्थान है। और मैं एक ही बार गया हूं, लेकिन एक बार जाने के बाद ऐसा फील हुआ कि अभी दोबारा नहीं आऊंगा। हालांकि वहां पे जाने के बाद आनंद का बहुत अनुभूत होता है, लेकिन कठिन जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कठिन शब्द का जो प्रयोग किया है ना, वो इसलिए प्रयोग किया क्योंकि उसके रास्ते जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ऐसा कितने हाइट से जाते हैं, समझ लो कि बस से हम अगर निकलते हैं तो ऊपर चढ़ते 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 बद्रिकाश्रम पहुंचते पहुंचते कम से कम 15 घंटे लगते हैं। तो 15 घंटा बस में ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ते चढ़ते मतलब कितने ऊपर चढ़ जाएंगे हम, और उस बस ऐसा दिखता है कि वो उसके खिड़की से जब दिखते तो पूरा नीचे दिखता है। रोड इतना छोटे छोटे हैं, ऐसा लगता है वो प्राण जो है ना पत्ते पे रहता है, है ना, कभी भी टपक जाएगा अभी, इस प्रकार का मतलब बस में अनुभूति होता है। तो ऐसा स्थान है इसलिए, और लेकिन बहुत बहुत ही रम्य स्थान है, वहां पे जाने के बाद बहुत ही आनंद की अनुभूति होता है। देखिए माता देवहूति को कपिल देव उनके ही पुत्र जब उपदेश दिया माता देवहूति को, तो उपदेश को प्राप्त करके माता देवहूति बद्रीनाथ धाम में ही जाकर तपस्या की। और यही नहीं, महाराज नाभी के पुत्र भगवान ऋषभदेव, भगवान नाभी एक प्रतापी राजा थे, अपने बहुत ही प्रतापी राजा थे, राज्य को बहुत सुंदर तरीके से संभालते थे, लेकिन जब ही उनका पुत्र ऋषभदेव बड़ा हो गए तो उन्होंने अपने राज्य को पुत्र को सौंप कर और निकल पड़े बद्रिकाश्रम। जितने भी मैं पहले ही बताया कि जितने भी देवर्षि ऋषि हुए सिद्ध हुए सारे लोग तपस्या करने के लिए कहां पे गए, बद्रिकाश्रम गए। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसलिए भगवान भी उद्धव को कहां भेजे, बद्रिकाश्रम जाओ, और भगवान की आज्ञा को शिरोधार करके उद्धव बद्रिकाश्रम के लिए निकले हुए हैं। सूर्यदेव ने भी तपस्या किया, सूर्यदेव ने वहां पर तपस्या करके अपने मन वांछित पर, क्योंकि वो ऐसा स्थान है कि वहां पे हम तपस्या करने के पीछे हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ विजन होता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना रहता है उससे। जैसे हम साधन भक्ति कर रहे हैं तो उद्देश्य एक ही है कि कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करें हम, तो हर एक तपस्या के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हो सकता है कभी कभी असुर लोग करते हैं तो गलत चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग करते हैं तो सही चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तपस्या करने के पीछे उद्देश्य होता है। तो सूर्यदेव भी ऐसे स्थान को चुनकर वहां पे तपस्या करके अपने मन वांछित फल प्राप्त किए, भगवान बद्रीनारायण से वहां पे तपस्या किए और प्रसन्न होकर, उनको जब प्राप्त हो गया तो प्रसन्न होकर वहां पे उन्होंने एक कुंड का निर्माण किया, वहां पे तप्त कुंड है बद्रीकाश्रम, बद्री विशाल भगवान बद्रीनारायण के एकदम मंदिर के गेट पे ही हाँ, गर्म कुंड है, तप्त कुंड, उबलता रहता है पानी और भक्त लोग जाकर उसमें नहाते हैं। ठंडी इतना रहता, सोचिए उबलते पानी में नहाते तो भी कुछ होता नहीं है इतना 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 ठंडा रहता है और उबलता रहता है और फ्रेश रहता पानी, बाइट पर वो जमीन से ही पानी आ रहा है, ऐसा कोई कृत्रिम वस्तु को वहाँ पे लगाया नहीं गया है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से वहाँ पे सूर्यदेव की कृपा से वहाँ पे तप्त कुंड है उस स्थान पे। तो इस प्रकार से देखिए पुराणों में बहुत सुंदर तरीके से स्तुतियां भी बद्री बद्रीनाथ धाम और भगवान बद्री नारायण का वर्णन हुआ है। कहते हैं कि पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर सुशोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। तो पवन मंद सुगंध शीतल अर्थात सब लोग समझ ही रहे हैं ना कि सुंदर हवा चलती है, सुगंधित हवा, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है, उन फूलों में से हवा जब बह के आती है। और हेम मंदिर अर्थात भगवान का जो वो सोने का जो मंदिर है और वहां पे ये सुंदर हवा शीतल हवा सुशोभित होती है, निकट में गंगा एकदम मंदिर और सामने ही गंगा जी है और बहुत तेज धारा है, गंगा में तेज धारा है, वहां पे थोड़ा नहाना डिफिकल्ट होता है लेकिन फिर भी भक्त लोग बनाया हुआ है पकड़ के नहाने के लिए, जंजीर वगैरह पकड़ के नहाते हैं वहां पे, तो सुंदर गंगा वहां पे बहती है। ऐसे भगवान बद्री नाथ जो कि विश्व का रक्षण करने वाले, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान की स्तुति करते हैं। शेष सुमिरन करत निषदिन धरत ध्यान महेश्वर वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। शेष भगवान शेष भी वहां पे निषदिन भगवान का गुणगान करते रहते हैं और यही नहीं ध्यान धरत महेश्वर भगवान शिव जी भी वहां पे बद्री नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। और वेद ब्रह्मा करत स्तुति, ब्रह्मा जी वेदों की स्तुति से भगवान को वहां पे प्रसन्न करते हैं। ऐसे भगवान बद्रीनाथ विश्वंभरम जो कि सभी का पालन करने वाले, उनकी हम स्तुति करते हैं। शक्ति गौरी गणेशारद नारद मुनि उच्चारण योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम, इंद्र चंद्र कुबेर वहां पे सब क्या करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, धूप दीप प्रकाशितम। सिद्ध मुनि जयन करे जय जय, तो वहां पे सिद्धात्मा जो भी सिद्ध मुनि है वो भगवान की हमेशा गुणगान करते रहते हैं। यज्ञ किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम श्री लक्ष्मी कमला चवर डोले श्री बद्रीनाथ सुमरात। स्वयं लक्ष्मी जी वहां पे भगवान का चरण दबाती है और उनको चवर ढुलाती है। श्री बद्रीनाथ की पढ़त स्तुति होत पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भयो पुण्य प्राप्त यह फलदायकम। कोटि तीर्थ भयो पुण्य, मैं पहले ही बताया कि सारे धाम बार बार बद्रीनाथ एक धाम एक बार, ऐसा वर्णन है। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले इस प्रकार की प्रथा ही थी कि जब भी वानप्रस्थ का जब समय आता था ना, वान अभी तो लोग तो घर में ही मर रहे हैं एक्चुअली, तो वानप्रस्थ के लिए कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन जब भी बच्चे बड़े हो जाते थे तो अपने घर बार को अपने सारे चीजों को छोड़कर बच्चे के ऊपर और वो पति और पत्नी निकल जाते थे, वानप्रस्थ ले लेते थे, तीर्थाटन करते थे। तो ऐसा पहले था कि जब भी वानप्रस्थ के लिए जाते थे अर्थात कोई वानप्रस्थ लेने तो वो बद्रीनाथ ही जाते थे, और जाते समय ही निकल घर से निकलते समय ही उसका एक संस्कार हो जाता था। कौन सा संस्कार? मृत्यु का संस्कार कंप्लीट कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अभी गए तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए कहा गया एक बार तो वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनका अभी उस समय उधर, क्योंकि वो वहां पे पहुंचते, पहले तो इस प्रकार का कोई साधन तो थे नहीं, लोग पैदल करते थे और जाते जाते पहुंच गए, कैसे भी पहुंच गए वहां पे दर्शन हो गया, रिटर्न वो पहुंच नहीं सकते वापस, इसलिए उनका सारा मृत्यु का संस्कार करके ही वो घर से विदाई लेते थे। कितना 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 सुंदर कितना सौभाग्य वाली बात है ना कि अपने जीते जीते अपने मृत्यु दाह संस्कार देख लेना बहुत सुंदर तरीके से उसको प्रसन्नता पूर्वक ये सब को फेस्टिवल मना के वो निकलते थे बद्रिकाश्रम के लिए और वापस वो नहीं आते थे। ये पहले था लेकिन अभी ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार से ये सारे तीर्थों को बार बार करने का संस्कृति शास्त्रों में है, लेकिन बद्रीनाथ धाम एक बार हो गया तो जीवन सफल हो जाएगा। बहुत ही रम्य स्थान जिसका वर्णन बहुत डिटेल में है, लेकिन बद्री विशाल, अच्छा बद्री विशाल बद्री नारायण लेकिन बद्री विशाल भी कहते हैं उनको। बद्री विशाल क्यों कहते हैं? हाँ वो भी एक रीजन होगा, विशाल है, सही अच्छा रीजन बताया, बहुत ऊंचे पे है करके। लेकिन मैं ऐसा पढ़ रहा था पुराणों में कि विशाल नाम का एक राजा थे, तो इतने प्रतापी राजा थे और सम्राट थे और उनके अधीनस्थ बहुत सारे छोटे मोटे सब राज्य उनके अधीनस्थ में थे और प्रतापी राजा थे, लेकिन किसी कारणवश उनका जो राज्य पाटना छूट गया, कोई हरा दिया होगा जो भी, और छूट गया, छीन लिया गया उनसे, तो वो बहुत दुखी हो गए और इस दुख को लेकर वो कहां जाते हैं, बद्रीनाथ धाम में जाते हैं। वहां पे जाकर भगवान बद्रीनाथ की बहुत तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, और उनके तपस्या से इतनी घोर तपस्या करते हैं कि उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे बद्री वहां पे जो नर नारायण जी का वहां पे जो तपस्या करने जाता है ना, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वो खुद भी वहां पे तपस्या कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस राजा के ऊपर प्रसन्न होकर, इतने इतने घोर तपस्या किया इसने कि इसके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उसका राज्य तो दे दिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि हे राजन, आप मेरे मुझे इतना मेरी तपस्या किया, मुझे इतना प्रसन्न किया कि आज से मैं अपने नाम के साथ आपका नाम रखूंगा, इसलिए बद्री विशाल कहते हैं, आपके आपके नाम के साथ, मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा, इसलिए एक नाम पड़ा भगवान बद्री नारायण का, बद्री विशाल। तो भगवान बद्री नारायण कैसे वहां पे, वो जो नर नारायण है कैसे वहां पे आए, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में ही करते हैं कि नर नारायण ऋषियों का स्थान है जो, और वहां पे तपस्या करने के लिए आए। अभी मैंने वर्णन किया कि माता अपनी माता मूर्ति और धर्म से आशीर्वाद प्राप्त करके जब ये नर और नारायण दोनों उस हिमालय की जगह पे तपस्या करने निकले, अच्छा घर छोड़ के जब बाहर निकले तो वो सोच रहे थे कौन सा स्थान चुनूं, ऐसा कौन सा स्थान चुना जाए जो कि सर्वश्रेष्ठ स्थान हो, उस स्थान पे हम तपस्या करेंगे। तो उन्होंने उस हिमालय स्थान को चुना, हिमालय को। तो जब ही लेकिन प्रथम बार जब गए तो बहुत सुंदर पास्ट टाइम आता है पुराणों में कि वहां पे जब प्रथम बार भगवान गए नारायण, तो उन्होंने देखा कि ये जो हिमालय स्थान है ये बहुत ही रम्य स्थान है, ये बहुत सुंदर स्थान है तपस्या करने के लिए, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और यहाँ पे कोई भी आता है तो केवल तपस्या के मूड में ही आता है, कोई अपने भौतिक कार्यकलाप कर ही नहीं सकता और वास्तव में कर नहीं सकता क्योंकि वहां पे सुविधा ही नहीं है। 6 महीना के लिए केवल खुलता है और 6 महीना बर्फ से ढक जाता है वो पूरा, और 6 महीना के लिए खुलता है तो कौन वहां पे अपना रेस्टोरेंट माल बैठाएगा, जमाएगा, क्योंकि उसके बाद तो अगर कुछ जमाया भी तो बर्फ से ढक जाता है, तब बर्फ से एक बार ढक गया उसको वापस सफाई करना है, सब करना कितना एक्सपेंसिव है, इसलिए वहां पे कोई बसा के नहीं रहता, इस प्रकार के इंद्रदृष्टि के दुनिया भर के साधनों को नहीं बसता है वहां पे। वहां पे एक ही उद्देश्य से लोग जाते हैं, केवल भगवान का दर्शन और तपस्या करने के लिए एक ही उद्देश्य से जाते हैं, और बाकी समय 6 महीना तक बर्फ ढक जाता है, मंदिर भी बर्फ में ढक जाता है। और उस समय बद्री विशाल बद्री नारायण को जोशीमठ, मतलब लगभग 6 घंटा की दूरी पहले वो लाकर जोशीमठ में सेवा पूजा होता है 6 महीना, बाकी समय ढका रहता, फिर उससे बाद में जब आता है समय, अभी आएगा अप्रैल मई में स्टार्ट होगा, तब वहां चले जाते भगवान। तो इस प्रकार से भगवान ने देखा कि स्थान जो है बहुत ही सुंदर रम्य स्थान है, इसी स्थान को हमें चुनना चाहिए तपस्या के लिए। तो लेकिन देखा क्या कि वहां पे ऑलरेडी एक बाबा जी अपना जगह अपना स्थान फिक्स करके बैठे हुए है, वो कोई और नहीं, शिव जी वहां पे पहले से बैठे हैं। और ऐसा वर्णन भी है कि जहां पे भगवान आने वाले रहते हैं ना, वहां पे शिव जी पहले से ही स्थान करते हैं, पहले से विराजमान हो जाते हैं वहां पे। तो शिव जी वहां पे अपनी एक सुंदर सी कुटिया बनाकर पार्वती के साथ वहां पे रखकर भजन साधन करते थे। डेली का रूटीन यही था कि वह उस कुंड में नहाते थे और नहा के और भजन करते थे दोनों पत्नी। तो भगवान ने देखा कि अभी मुझे यहाँ पे तो निवास तो चाहिए, मुझे स्थान तो चाहिए, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, पहले इनको यहाँ से हटाता हूँ। तो भगवान ने प्लान बनाया। भगवान ने क्या प्लान बनाया कि भगवान ने एक छोटे बालक का रूप ले लिया, छोटा सा बालक है, 3-4 साल की उम्र का बालक, और छोटे से बालक के रूप में क्या किए, जिस रास्ते से भगवान शिव और पार्वती सुबह डेली वो नहाने के लिए जाते थे, उसी रास्ते में वो अपने आप खड़ा हो गए, उस रास्ते में छोटे बालक के रूप में खड़ा हो गए और शिव जी निकले। तो भगवान बालक के रूप में थे, कहीं छुप कर खड़े थे, उन्होंने देखा कि शिव जी जब चले जाएंगे ना तब मैं सामने आऊंगा, मतलब उनका ये इच्छा था कि माता पार्वती के सामने मुझे जाना है, क्योंकि स्त्रियों का हृदय ऐसे ही बच्चों के प्रति बहुत स्वाभाविक उनका प्रेम उमड़ता है, तो मुझे जो कार्य कराना मैं करवा लूंगा। शिव जी पता नहीं कौन से मूड में रहेंगे, वो उस प्रकार का कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए शिव जी के जैसे ही चले गए और माता पार्वती पीछे पीछे आ रही थी, और तब तक भगवान उस बालक के रूप में, और उधर ही सामने नहीं आए, उधर ही साइड में बैठ कर रोने लगे। बहुत सुंदर बालक, लेकिन क्या कपड़े फटे हुए पहने थे और रो रहे थे। और ये जब दृष्टि माता पार्वती ने देखा कि एक बालक जो है यहाँ पे रो रहा हुआ है, पड़ा हुआ है, बहुत चिल्ला रहा है, तो तुरंत पास में गई। क्या हुआ? तो बालक बोला, कुछ नहीं, मेरे को भूख लगा है, मेरे मम्मी नहीं है, पप्पा नहीं है, मेरे को कौन छोड़ दिया इधर, मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार से रो रो के सुनाने लगे पार्वती का। अभी बताइए कौन कौन माता है जो कि उसका हृदय पर द्रवित नहीं होगा। इस प्रकार से रोने लगे। उसमें पार्वती जी ने बोला शिव जी को कि अरे रुको रुको रुको, देखो ये बालक, इसको हम साथ में लेते हैं, बहुत इसको भूख लगा हुआ है। तो शिवजी एक्चुअली फिर स्नान करने चले गए। बोले कि नहीं नहीं, तुम उस चक्कर में पड़ो मत, ये बालक मुझे, इस बालक में ना दो प्रकार की चीजें दिख रहा है, ये पता नहीं कुछ और हो सकता है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। और ये इस हिमालय में कौन आता है, इस हिमालय में ऐसा कौन बालक है इस प्रकार के इतना छोटे रूप में आकर पढ़ा हुआ है उधर, तुम उसके चक्कर, हमको अपना भजन करना चाहिए, तुम उसको छोड़ो। लेकिन पार्वती तो चिल्लाने लगे, क्या आप ऐसा सोच रहे हो, आपका हृदय कैसा, इतना कठोर है हृदय आपका, अरे बालक रो रहा है, चिल्ला, उसको भूख लगा है, और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तो बोले ठीक है शिव जी, बोले तुमको जो करना करो। वो गए स्नान करने के लिए, स्नान करके आए, और उस समय पार्वती ने उस बालक को अपने गोद में उठा लिया, गोद में उठाकर, और शिव जी आए, बोले कि चलो अभी चलते हैं। तो बोले कि ठीक है चलिए, अब इस बालक को हम लेके चलेंगे, अपने जो भी कुटिया है उस कुटिया में लेके चलेंगे, हम साथ में रखेंगे। तो शिव जी, उनका एक ही शब्द था, बार बार वो समझा रहे थे पार्वती कि नहीं छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, कुछ भी हम लोग के साथ हो सकता है, तुम मत करो ऐसा। लेकिन पार्वती नहीं मानी, होम मिनिस्टर के आगे कहाँ चलता है किसी का, तो नहीं मानी और जिद पकड़ ली, लेके चली गई कुटिया में। कुटिया में लेकर गई, और कुटिया में लेकर उस बालक को बहुत सुंदर तरीके से पकवान बनाकर उसको खिलाने लगी, बहुत स्नान कराया उसको, सुंदर वस्त्र धारण करवाया, सब कुछ करते, और ये सब करते करते बार बार बोल रही है तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन में अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो। जैसे जाते हैं ना कोई साधु संत किसी घर में जाते हैं, तो उस घर के लोग बोलते हैं कि आप प्रभु जी आप शरमाइए मत, अपना ही घर समझिए। लेकिन प्रभु जी शरमाना बंद करके अपना घर समझ लेंगे, तो पता चला कि डंडा उठा लेंगे कि निकल नहीं रहा घर से। लेकिन पार्वती थी, उसने हृदय से बोल रही थी कि अपना ही समझो, आज के लोगों की तरह नहीं थी, हृदय से बोल रही थी कि अपना ही समझो, टेंशन मत लो, तुम इधर रहो, तुमको कोई चिंता नहीं, तुम बिल्कुल रो मत। इस प्रकार से बहुत सुंदर रूप से उस बालक का सेवा किया पार्वती जी ने। और उसके बाद दूसरे दिन रोज के रूटीन के अनुसार पति और पत्नी शिव जी और पार्वती निकले नहाने के लिए, और बालक वो घर में ही था, सोया हुआ था, और सुबह ये लोग जल्दी उठे और उठ के निकल गए। और जब स्नान करके जब वापस आए, अभी ठंडी तप्त कुंड में स्नान करना, देखिए ठंडी बहुत रहता है, आप किसी भी गेस्ट हाउस में रुकते हैं ना, वहाँ पर स्नान करने जाने के लिए ना बहुत तपस्या, बहुत, हम जैसे कमलोचन प्रभु के साथ जब गए थे, तो जिस गेस्ट हाउस में, वहाँ से 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर के आसपास में ही, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूर पर ही गेस्ट हाउस है सभी, मंदिर का प्रवेश छोड़ के। तो उठकर सुबह दौड़ लगाते थे, जितना तेज दौड़ना है, क्योंकि इतना ठंडा लगता था कि दौड़ने में क्या थोड़ा गर्म हो जाता था, और जाके सीधा कूद जाते थे कुंडे में। अभी एक बार कुंड में कूदने के बाद वो निकलने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि बाहर इतना ठंडी, और नहाने के बाद अभी गर्म से फिर वापस ठंडा, मतलब कितना जोर से और ठंडा लगता है, और पानी तो गेस्ट हाउस में टच नहीं कर सकते, ऐसा जैसे करंट मार रहा है ऐसा पानी होता है। तो अभी शिव जी और पार्वती स्नान करके आए, स्नान करके जब आए, और ठंडी लगी रहा था, स्नान ठंडी लग रहा था, और जाकर दरवाजे को खटखट करने लगे। अभी दरवाजा हो तो अंदर से बंद कर दिया बालक ने, शिव जी बोले कि मैं तुमको पहले ही बोला था, और बहुत देर तक खटखट खटखट किए, आवाज ही नहीं आ रहा। शिव जी बोले मैं बोला था तुमको उसको रखो मत, तुमने गड़बड़ कर दिया, कुछ ना कुछ होगा, देखो। नहीं नहीं क्या होगा, पार्वती जी बड़े प्रेम से उस बालक को बुलाने लगी, खोलो खोलो, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तब बालक उठकर आवाज देने लगा, दरवाजे के पास आ गया, दरवाजा खोला नहीं, आवाज देने लगा, बोले कौन है। तो बोले अरे मैं तुमको लेकर आई थी ना, हम दोनों अभी स्नान करके आए, और खोलो जल्दी ठंडा लग रहा है बाहर। तो बोले कि देखो आपने ही बोला था कि अपना ही समझो, अपना ही समझो, तुम्हारा ही घर है, तो ये मेरा घर है, अभी आप अभी इधर रहिए, आप कुछ अपना व्यवस्था कर लो, मुझे इधर रहना है। शिव जी बोले कि देखो मैं पहले ही बोला था, और पार्वती बहुत समझा रही है, बहुत समझा रही है, वो बालक समझने के लिए तैयार नहीं है। शिव जी बोले कि अभी चलो हाथ पकड़े, बोले चलो अभी ये गया, और वैसे भी हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता है, हम कभी भी कोई प्लान करते बाद में खत्म ही हो जाता है, इसलिए चलो पार्वती का हाथ पकड़े, और तब से वो केदारनाथ चले गए। केदारनाथ में जाकर रहने लगे। तो इस प्रकार से भगवान नर और नारायण आकर वहां पे बस गए। जब शिव जी वहां पे थे, एक पास टाइम करके हम खत्म करते हैं। जब शिव जी वहां पे रह रहे थे उस समय, तो उस समय की एक घटना है कि एक राक्षस शिव जी के तपस्या करता था वहां पे, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या किया। देखिए राक्षस था, लेकिन वो भी बद्रिकाश्रम को, उसको मालूम था कि वहां पे मैं तपस्या करूंगा ना, उसका फल जरूर प्राप्त होगा, इसलिए वहां पे तपस्या करने के लिए गया वो। तो राक्षस शिव जी का महान उपासक था, एक्चुअली कट्टर शैव था, शिव जी का भक्त था कट्टर, और उस इतना कट्टर था कि वो अपने कान में नारायण शब्द भी नहीं सुनता था। जैसे कि कांचीपुरम में जाते हैं ना, वहां पे शिव जी के प्रति वो कट्टरता इतना, शैव और विष्णु दोनों के भक्त होते हैं ना, दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इतना कट्टरता रहता है शिव के और नारायण में, दोनों में। तो अब नारायण का शब्द भी नहीं सुनना था, और नारायण क्षेत्र होने के नाते सारे लोग तो तपस्या नारायण के करने आते हैं, तो वहां पे नारायण 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 ध्वनि चलता रहता है। तो इसलिए इसने क्या किया, शिव जी का तपस्या कर रहा है वहां पे उनको प्रसन्न करने के लिए, इसने क्या किया, नारायण शब्द कान में न जाए करके बहुत बड़े बड़े दो घंटे अपने कान में लटका दिया कि क्या है ना, हिलता रहेगा ना, घंटा घंटा बजता रहेगा तो नारायण अंदर नहीं जाएगा। राक्षस था वो, नारायण शब्द और पक्का शिव भक्त था, उसने घोर तपस्या की, 1000 साल तक तपस्या किया वहां पे, और शिव जी प्रसन्न होकर उसको प्रकट होकर उसको दर्शन दिए, बोले कि तुमने मेरी घोर तपस्या की है और तुम मेरे पक्के भक्त हो, इसलिए बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उस राक्षस ने बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए। तो शिव जी बोले अरे बाप रे बाप, तुमने जो चीज मांगा मेरे पास वो है ही नहीं, मैं कहां से दूंगा, मैं नहीं दे सकता मुक्ति, मैं नहीं दे सकता मुक्ति, तो केवल भगवान मुकुंद ही दे सकते हैं, मुक्ति ददाति स मुकुंद, भगवान मुकुंद है, भगवान नारायण ही दे सकते हैं मुक्ति, और दूसरा को हमें वो ताकत नहीं है। हाँ तुमको मुझसे और कुछ चाहिए, संसार का कोई सुख सुविधा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जो भी चाहिए बताओ, तुमको मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुक्ति मैं प्रदान नहीं कर सकता, मुक्ति केवल भगवान नारायण ही प्रदान कर सकते हैं, इसलिए तुमको उनके पास जाना पड़ेगा। इसने बोला कि खामखा 1000 साल बिगड़ा, आपको पहले आकर बता देना चाहिए था आपको, अगर नहीं दे पाए तो। तो बोलने लगा अभी मैं क्या करूं, इतना दिनों तक मैं तपस्या किया, अभी अभी उनको, और मैं तो कट्टर विरोधी हूं नारायण को, तो कान में शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं, आप बोल रहे हो उनके पास जाने के लिए। तो उस समय शिव जी बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम उनके पास जाओ, और वो इसको इतना डर था कि क्या मैं अभी भगवान के पास जाऊंगा तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो जीवन भर कट्टरता से उनका नाम को भी नहीं सुनना चाहा हूं, और बहुत विरोध किया हूं मैं तो आपकी पूजा, आपको आपका भक्त हूं। तो उस समय शिव जी बहुत सुंदर तरीके से भगवान नारायण के विषय में वर्णन करते हैं कि तुम देखो, तुम चिंता मत करो, तुमने भले से उनका विरोध किया है, उनका उनका विरोध किया, उनका कट्टरता से अपने कानों में उनका शब्द को भी नहीं सुना है, कितना भी विरोध किया हो, लेकिन एक बार उनके शरण में अगर चले गए तो भगवान इतने कृपालु है कि तुमके हमारे ऊपर निश्चित रूप से कृपा कर देंगे, है ना, इतना कृपालु है। कम वा दयालुम शरणम प्रबद्धे अहो बकीयम स्तन काल, पूतना आई कालकुट विष लेकर, लेकिन भगवान इतने कृपालु कि उस पूतना को भी मां की गति दे दिया। तो इस प्रकार से शिव जी उसको बहुत सुंदर तरीके से भगवान के विषय में, मुकुंद के विषय में बताते हैं कि तुम बिंदास उनके पास जाओ और कोई संदेह ना रखो, और निश्चित रूप से उनके पास जब जाओगे तो तुमको ये मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बोलकर उन्होंने तब क्या किया, इसका क्योंकि कान में घंटा बांध लिया था ना, इसलिए उसका नाम पड़ गया था घंटाकरण नाम पड़ा उसका। तो ये अपना घंटा को काट दिया अभी, काट कर और पूछा शिव जी कि कहाँ मिलेंगे भगवान। तो उस समय भगवान द्वारिका में थे, हाँ उस समय उन्होंने बोला कि द्वारिका जाओ, वहां पे भगवान रहेंगे, वहां पे उनका दर्शन करो, और निश्चित रूप से तुम्हारी मनवांछित ये मुक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा है भगवान दे देंगे। तभी क्या किया, वो बद्रिकाश्रम से पैदल निकला द्वारिका के लिए, निकल के द्वारिका पहुंचा। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो द्वारिका में पहुंचा, तो द्वारिका में पहुंचने के बाद पता चला कि भगवान नहीं है। भगवान ने पूछा कि कहाँ गए, तो बोलते कि देखिए वो अभी अभी शादी किए हुए है ना, तो शादी किए हुए तो वो संतान प्राप्ति की इच्छा हेतु लिए वो कैलाश गए हैं शिव जी की तपस्या करने के लिए। अभी इसका दिमाग खसक गया, शिव जी ने मेरे को भेजा यहाँ पे कि मुक्ति मुझे यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि वो शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने कैलाश गए, ये क्या चक्कर है? तो सोच में पड़ गया वो, तो तुरंत फिर बोला कि ठीक है चाहते हैं कैलाश जाएंगे क्या करेंगे, तो फिर निकल पड़ा वहां से वापस निकला। लेकिन रास्ता तो वही हिमालय से होके जाना, इसलिए बद्रीनाथ उधर हिमालय पहले ही आया। तो उस समय वहां पे उसने कुछ लोगों का दर्शन किया, कुछ भक्तों का जो भी विष्णु तिलक लगाकर वहां पे टोली बना के घूम रहे थे, तो उसने पूछा कि भगवान किधर है इस समय? तो बोले कि भगवान अभी अभी कैलाश से लौटे हैं, बद्रियासम कैलाश से लौटे हैं और यहीं पे हैं। तो बोले अच्छा यहीं पे है, चलो मैं अभी उनका दर्शन कर लेता हूँ। दर्शन की अभिलाषा से भगवान के पास वो गया और उसने सारी स्टोरी बताया, और भगवान फिर पूछने लगे हैं। उसने बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, इसलिए मैं शिव जी का इतना घोर तपस्या किया, उन्होंने आपके पास भेजा, आप मुझे मुक्ति दीजिए। तब भगवान बोलते कि मुक्ति क्यों चाहिए तुमको? मुक्ति जब क्यों चाहिए पूछे तो बोला कि क्यों चाहिए, वैसे ही चाहिए मुक्ति मुझे, राक्षस था बोला मुक्ति चाहिए। अरे बोलने लगा कि देखिए संसार में कुछ भी सारा कुछ टेम्पररी है, बुढ़ापा तो आने ही वाला, सब लोग मर रहे हैं, देख रहा हूँ कितना दुखाल है, शास्त्र में भगवद्गीता का कई सारे चीजों को बता दिया, इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए, इस संसार से मुक्त होना है। तो भगवान, क्योंकि उसको साथ साथ भगवान का दर्शन हुआ था, इसलिए भगवान ने इस मुक्ति से भी बढ़कर चीज उसको दिया। उसको भगवान बताते हैं और उसको क्या किया भगवान ने, उसको अपनी सेवा में नियुक्त कर दिया, और उस समय उस घंटाकर्ण को भगवान कृपा करके वहां का क्षेत्रपाल बना दिया। तो वहां का जो क्षेत्र का रक्षा करने के लिए ये जो असुर घंटाकर्ण, उसको क्षेत्रपाल अपनी सेवा दे दी। तो यहाँ पे देखिए सेवा का इंपॉर्टेंस, उस मुक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा है। हम जो सेवा ये कर रहे हैं ना, उस मुक्ति की प्राप्त करने की इच्छा से भी कई ज्यादा गुना बढ़कर ये सेवा है जो हमको मिली है कृष्ण भावनामृत में। तो बहुत सुंदर तरीके से इस प्रकार से भगवान नर नारायण वहां पे तपस्या कर रहे हैं। इसी बात का आज के श्लोक में उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं। अभी इसी को स्मरण करते हुए उद्धव जी धीरे 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 अभी बद्रिकाश्रम में पहुंच जाएंगे, और आगे का हम आगे के श्लोकों में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बद्रीनाथ धाम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वांछा कल्पतरुवेश्य कृपा सिंधु भय, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
जोशी मठ में क्या है?
शंकराचार्य का मठ है, वहाँ पे भगवान आके रहते हैं।
वैष्णव नहीं सेवा
करते? वैष्णव नहीं करते हैं, शंकराचार्य के ही।
छह महीने के लिए भगवान,
छह महीने के लिए आते हैं।
अच्छा, उसका नाम बद्री बद्री नारायण क्यों पड़ा? बद्रिकाश्रम क्यों है भगवान का नाम? नर नारायण,
हाँ बद्री आश्रम, बद्री
आश्रम में उसका बद्री,
जंगल था ये बहुत।
बेर को ज्यादा पानी नहीं लगता है।
अगले महीने जाना है,
महीना
है प्लान कर जाते हैं। बहुत